गुरु भक्ति योग। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु का कृपा प्रसाद और शिष्य की कोशिश मिलती है तब अमृत रूपी बालक का जन्म होता है। शिष्य को ज्ञान दिए बिना ही गुरु को उसके पास से गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। गुरु के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणु शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं वे छुपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती हैं। दक्षिणेश्वर कोलकाता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस किसी मार्ग से जा रहे थे। उन्हें देखकर झाड़ू लगाने वाले रसिक मेहतर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर ने प्रसन्न मुख से पूछा, क्यों रे रसिक, कुशल तो है? हाथ जोड़कर रसिक ने उत्तर दिया, बाबा हमारी जाति हीन है, हमारा कर्म हीन, हमारा क्या कुशल मंगल। ठाकुर तेज युक्त स्वर में बोले, हीन जाति कहां, तेरे भीतर नारायण है। तो स्वयं को नहीं जान पाया इसलिए हीनता का अनुभव कर रहा है। रसिक ने कहा, किंतु कर्म तो हीन है महाराज। अरे क्या कह रहा है, क्या कभी कोई कर्म हीन होता है? यहां मां का दरबार है, राधा कांत द्वादश शिव का दरबार है, कितने साधु संतों का यहां आना जाना लगा रहता है। उनके चरणों की धूल चारों ओर फैली हुई है। झाड़ू लगाकर तो वही धूल अपने शरीर पर लगा रहा है। कितना पवित्र कर्म है, कितने भाग्य से यह सब तुझे मिल रहा है। खुद को हीन समझता है। रसिक आश्वस्त होकर बोला, बाबा मैं मूर्ख हूं, बातों में आपसे पार नहीं पा सकता। मैं तो केवल एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी मुक्ति होगी। ठाकुर चलते चलते स्वाभाविक बोले, हां होगी, अंतिम समय होगी, किंतु घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और संध्या के समय हरि नाम का जप करना। संत तो परम हितकारी होते हैं, वे जो कुछ कहें उसका पालन करने के लिए तत्परता से लग जाना चाहिए। इसी में हमारा परम कल्याण है। महापुरुष की बात को टालना नहीं चाहिए। रसिक ने ठाकुर जी की आज्ञा समझकर अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा लिया और रोज बच्चे बूढ़ों सहित संध्या काल में हरि नाम का जप कीर्तन करने लगा। कुछ वर्ष पश्चात रसिक की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था पर उसने जिद पकड़ी कि दवा नहीं खाऊंगा। बुखार ने और जोर पकड़ा। एक दिन भरी दोपहर को उसने पत्नी को बुलाया और कहा, मुझे तुलसी के पास ले चलो। पुत्रों को बुलाया और कहा, अब मेरा शरीर जाने वाला है। बच्चे जल्दी उसे तुलसी के पास ले गए। वहां रसिक तुलसी की माला से जप करने लगा। जप करते करते पता नहीं उसे कौन सा दृश्य दिखने लगा। उसके मुखमंडल पर तृप्ति संतुष्टि का एक विलक्षण भाव झलकने लगा। अचानक वह बोल उठा, बाबा आए हो? आहा, कितने सुंदर बाबा, आपके दर्शन से कितनी शांति मिल रही है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बाबा बाबा, न कहीं सांस खिंची न हिचकी आई। बोलते बोलते रसिक ने गंभीर शांति से आंखें मूंद ली और सदा के लिए परमात्म धाम में प्रवेश पा लिया। भगवत प्राप्त महापुरुष पृथ्वी पर के साक्षात कल्पतरु हैं। जन्मों की अंतहीन यात्रा से थका मानव उनका सानिध्य पाकर उनके अमृत वचन सुनकर परम शांति का अनुभव करता है। उसे जीवन में भी विश्रांति मिलती है और मृत्यु में भी परम विश्रांति। वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। बस ऐसे महापुरुषों के वचनों पर अडिग होना चाहिए। गुरु वचनों का श्रवण मनन निदध्यासन तथा अजपा एवं ओमकार या गुरु मंत्र का मानसिक जप करने वाले को आंतरिक जागृति होने के कारण जड़ पदार्थों के झकोले चलायमान नहीं कर सकते। प्रतिदिन भगवान के गुरु के चरणों में प्रार्थना करो तो सफलता प्राप्त होगी। बुद्धि में प्रकाश होगा और सत्कर्म की शक्ति उपलब्ध होगी। सत्पुरुषों की वाणी, अकाल पुरुष की आज्ञा समझ शिरोधार्य करो।